विशेष देर है पंचतत्वा में जो श्रीवास ठाकुर या श्रीवास पंडित का आविर्भाव महोत्सव है। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला श्लोक संख्या एक में अध्याय एक श्लोक संख्या 38 भगवान भक्त जता श्रीवास प्रधान दास बार पद पद में सहस्र प्रणाम भगवान भक्त जता श्रीवास प्रधान दास बार पद पद में सहस्र प्रणाम भगवान भक्त जता श्रीवास प्रधान दास बार पद पद में सहस्र प्रणाम भगवान के असंख्य भक्तों में श्रीवास ठाकुर अग्रणी हैं। मैं उनके चरण कमलों में हजारों बार सादर नमस्कार करता हूँ। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम् वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापरकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम राम राम
हरे हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीवास ठाकुर के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने से पूर्व अपने जो प्रमुख पार्षद हैं, उनको बंगाल के अलग अलग स्थानों में प्रकट कराते हैं। वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज कहते हैं कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की दया की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने उनके पार्षदों को ऐसे ऐसे स्थानों में जन्म दिलवाया या ग्रहण करवाया कि जिन स्थानों में उन स्थानों को अपवित्र माना जाता है, जिन स्थानों में पांडवों ने भ्रमण नहीं किया, या फिर जिन स्थानों में गंगा आदि नहीं बहती है, तो ऐसे ऐसे स्थानों में चैतन्य महाप्रभु ने अपने जो प्रमुख पार्षद हैं उनको प्रकट कराया, और उनमें से श्रीवास ठाकुर या श्रीवास पंडित, और चैतन्य भागवत में इनका नाम कई बार श्रीनिवास भी लिखा गया है। तो ऐसे श्रीवास पंडित का जो प्राकट्य है, आज के दिन हुआ था चैत्र मास की जो कृष्णाष्टमी है, और बंगाल में श्रीहट्ट नाम के गांव में ब्राह्मण परिवार में, और उनके पिता का नाम था श्री जलधर पंडित। तो ऐसे जलधर पंडित के कई सारे पुत्र थे। नित्यानंद दास प्रेमविलास ग्रंथ में लिखते हैं कि उनके 5 पुत्र थे, श्री नलिन पंडित, श्रीवास पंडित, श्रीपति, श्री राम और श्री निधि। तो जब कुछ समय बीता, तो जो नलिन पंडित है उनकी पुत्री नारायणी देवी है, तो उस समय के बाद जलधर पंडित का अप्राकट्य हुआ, तो नलिन पंडित आदि अपने सारे भाइयों को लेकर नवद्वीप में आए और नवद्वीप में निवास करने लगे। तो जो श्रीवास ठाकुर है, अद्वैत आचार्य जब शांतिपुर में निवास करते थे, तो उन्होंने नवद्वीप में टोल खोला था, टोल में स्कूल। तो उस स्कूल में जो प्रमुख छात्र थे वो श्रीवास पंडित थे। आगे चलकर श्रीवास पंडित ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ग्रहण की, और माधवेंद्रपुरी को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में श्रीवास ठाकुर ने स्वीकार किया। तो नवद्वीप का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि एक प्रकार से नवद्वीप में अधिक मात्रा में अभक्तों का निवास था, भक्ति आदि उनका कोई लवलेश ही नहीं था चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से पूर्व। तो लेकिन केवल कुछ कुछ ऐसे वैष्णव थे जिनकी संख्या बहुत कम थी, वो आपस में मिलते थे आद्वैत आचार्य के ग्रह में, और कृष्ण कथा, कृष्ण आराधना और कृष्ण पूजा में या कृष्ण नाम संकीर्तन में नियुक्त रहते थे। तो उनमें से श्रीवास ठाकुर प्रमुख है। तो बाद में जब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ और वो निमाय पंडित के रूप में पूरे नवद्वीप में प्रसिद्ध हुए निमाय पंडित, तो ये निमाय पंडित भगवान अपने बाल्यकाल में विद्या विलास, विद्या का जो लीला है, विद्या रस का आस्वादन करने के लिए नवद्वीप में कई प्रकार की लीलाएं क्रीड़ाएं करते हैं, और ऐसे इस विद्या विलास में निमाय पंडित को बहुत अधिक घमंड होता था कि मुझसे बढ़कर कोई विद्वान नहीं है, मैं सबको हराने का सामर्थ्य रखता हूं। इस अहंकार के कारण पूरे नवद्वीप में भ्रमण करते थे, और अकेले नहीं, उनके साथ अपने 2-4 शिष्यगण होते थे, और उनको लेकर छाती आगे बढ़ाकर और हाथ में हमेशा एक बुक रखते थे। उस पुस्तक को लेकर निमाई पूरे नवद्वीप में भ्रमण किया करते थे, और ऐसे भ्रमण करते करते विशेष रूप से वो जो भक्त थे उनका उनकी छेड़खानी करते थे, विशेष रूप से मुकुंद आदि हैं, गदाधर हैं। जब निमाई पंडित चलते थे तो मुकुंद या गदाधर दूर से देखे कि वहां से निमाई आ रहा है कुछ उनके शिष्यों के साथ, तो रास्ता बदल देते थे, इसके सामने जाना उचित नहीं है, ये आते हाथ पकड़ता है और कृष्ण से विपरीत प्रश्न पूछते रहता है, तो इसके पास जाना नहीं। लेकिन कभी कभी उनको लगता था ये यदि भक्त बन जाए ना तो मैं अपने जीवन में इसका संग नहीं छोड़ूंगा, ऐसी इच्छा इन भक्तों की हुआ करते थे, मुकुंद गदाधर आदि की। तो निमाय पंडित जान बुझ के अपने भक्तों के साथ थोड़ी हंसी मजाक मस्ती किया करते थे, और उनके हृदय की बात को भी जानते थे, ये चाहते हैं कि मैं भक्त बनूं। तो कभी कभी निमाय पंडित उनको गुस्से में आके कहते थे कि मैं ऐसा भक्त बनूंगा कि सारा जगत देखेगा, मेरे संग के लिए है आप सब लोग लालायित हो जाओगे, ऐसा कभी कभी निमाय पंडित बोला करते थे। तो ऐसे एक बार जो निमाय पंडित हैं वो भ्रमण निकल रहे थे नवद्वीप में, तो उस समय उनको श्रीवास ठाकुर मिलते हैं। तो चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, एक दिन प्रभु आई सेन राजपथे पांच सात करो या प्रभु रक्षारे बीते। तो एक दिन निमाई पंडित कई सारे स्टूडेंट के साथ राजपथ नवदीप में जो मेन रोड होगा मेन जो स्ट्रीट है उसमें से चल रहे थे अपने सात आठ स्टूडेंट के साथ। व्यवहारे राजयोग्य वस्त्र परिधान अंगे पीत वस्त्र शोभे कृष्ण रसमान। उन्होंने कैसे वस्त्र धारण किए थे? जैसे कृष्ण वस्त्र धारण करते हैं वैसे ही पीताम्बर आदि और राजा राज राजा को शोभा देने वाले जो वस्त्र है वही निमाई पंडित ने धारण किए थे। आधरे तांबूल कोटि चंद्र श्रीवदान लोके बोले मूर्तिमंत यही के मदान। तो निमाई पंडित जब रास्ते से चलते थे तो उन्होंने मुंह में क्या चबाते हुए जाते थे? तांबूल। और दूर से लगता था कि करोड़ों करोड़ों चंद्रमा का अवतरण हो गया है। उनका मुखकमल इतना सौंदर्यवान है शोभायमान था। लोग बोलते थे कि ये साक्षात कामदेव तो नहीं आ गया नवदीप की गलियों में। ललाटे तिलक ऊर्ध्व पुस्तक शिखरे दृष्टि मात्रे पद्म नेत्रे सर्व पाप हरे। ललाटे तिलक ऊर्ध्व ऊर्ध्व तिलक ऊर्ध्व पौंड तिलक अपने ललाट में धारण करते थे और पुस्तक शिखरे सदैव हाथ में बुक लेके चलते थे। दुष्ट दृष्टि मात्र उनकी जो दृष्टि जिस भी व्यक्ति पर पड़ते थे दृष्टिपात करने मात्र से सारे पाप उस व्यक्ति के हृदय से निकल जाते थे। स्वभावे चंचल पड़ो यार वर्ग संगे बाहुदोलाया प्रभु आई से नंगे। स्वभाव से स्वयं ही चंचल थे तो चंचल व्यक्ति के साथ जितने उनके स्टूडेंट थे वो भी बहुत अधिक चंचल थे। दैव पथे आई से न पंडित श्रीवास प्रभु देखे मात्रता न हैल महास। तो उसी समय जब ये पूरा अपने ग्रुप के साथ चल रहे थे तांबूल आदि चबाते हुए विद्या या नॉलेज का घमंड था अहंकार था तो सामने से श्रीवास पंडित आते हैं और प्रभु देखी। जब महाप्रभु को निमाई को इस रूप में देखा विद्या के गर्भ में चल रहा है किताब हाथ में लेकर तो श्रीवास पंडित को हंसी आई। ताने देखी प्रभु करे लेना नमस्कार चिरंजीवी हो बोले श्रीवास उदार। वैसे श्रीवास पंडित चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत में दो भक्तों का सर्वाधिक वर्णन है। एक है श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर। तो कई सारी लीलाएं हैं श्रीवास पंडित की। तो चैतन्य महाप्रभु निमाई रूप में जब थे तो कभी भी किसी का आदर सम्मान नहीं करते थे लेकिन श्रीवास पंडित जब सामने आते थे तुरंत उनके चरणों में गिर जाते थे। तो इस समय श्रीवास पंडित के सामने गिरे प्रणाम किया उनको तो श्रीवास पंडित ने कहा चिरंजीवी हो आप चिरंजीवी बनो या रहो। हासिया श्रीवास बोले कह देखी सुनी कति चलिया च बुद्ध तेरा चूड़ामणि। तो श्रीवास पंडित हंसते हुए बोले कि मैं देख रहा हूं जो उद्धट लोग होते हैं उनमें से तुम सर्व टॉप में हो। तो ये ऐसा उद्धट व्यक्ति कहां जा रहे हो तुम? कृष्णा भजिया काल की कार्य गुआ रात्रि दिन निरवधि केने वापड़ा। अभी श्रीवास ठाकुर निमाई को डांटने लगे। उन्होंने कहा कि कृष्ण का भजन न करके आप अपना समय क्यों व्यतीत कर रहे हो? रात्रि दिन निरवधि केने वापड़ा है दीवार दिन में है और रात्रि क्यों पढ़ाई पढ़ाई करने में गवा रहे हो? पढ़े के ने लोग कृष्ण भक्ति जाने बारे से जदि न हिलतबे विद्या एकी करे। शिवास पंडित ने कहा व्यक्ति को पढ़ना चाहिए कृष्ण को जानने के लिए लेकिन तुम पढ़ाई कर रहे हो कृष्ण को जानने के लिए नहीं आपने घमंड आदि को बढ़ाने के लिए है। यते कर सर्वदा व्यर्थ नागो आओ काल पढ़िला तयवे कृष्ण भज सकाल। उन्होंने कहा ये सब भौतिक पढ़ाई करके अपना समय व्यतीत मत करो तुम क्या करो कृष्ण का भजन करो कृष्ण की सेवा में तत्पर हो जाओ। तो फिर ये निमाई जो साक्षात कृष्ण है कृष्ण वही श्रीवास ठाकुर डांट रहे हैं और बोल रहे क्या करो कृष्ण भक्ति करो। हसी बोले महाप्रभु सुनह पंडित तुम्हारा कृपया से हरि वर्णित। तो निमाय पंडित हंसने लगे और उन्होंने कहा है पंडित श्रीवास आपकी कृपा से हाँ ये निश्चित होगा कि मैं एक दिन क्या बनूंगा कृष्ण का भक्त बनूंगा। तो इस प्रकार से हाँ श्रीवास ठाकुर निमाय पंडित को डांटते थे और कृष्ण भक्ति करने के लिए उनको सदैव प्रेरित करते थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब अपने स्टूडेंट्स के साथ गया के लिए चले गए थे जगन्नाथ मिश्र के लिए पिंडदान करने के लिए, तो वहां से जब वापस आए, वापस आने के उपरांत बिल्कुल अलग ही हो गए थे। अभी उन्होंने ये सब विद्या आदि का अध्ययन आदि एक प्रकार से त्याग दिया था और पूर्ण रूपेण कृष्ण नाम कृष्ण का गुणगान करना और वैष्णवों के संग में रहना ये उनको अच्छा लगने लगा था। तो निमाय पंडित जब गया से वापस आए तो आते ही नवद्वीप में ये चर्चा फैली कि अभी ये निमाय पहले जैसे नहीं रहा, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। पहले बहुत उद्धट था, अभी बहुत विनम्र हो गया है। तो श्रीवास पंडित के घर के सामने एक कुंद जो फूल होते हैं उनका एक वृक्ष था। तो नवद्वीप के जितने भक्त होते थे वो सारे आते थे सुबह सुबह स्नान करके श्रीवास ठाकुर के घर के सामने और वहां पुष्प चयन करते थे, पुष्प चयन अपने घर में पूजा आदि के लिए। तो इस दिन जब निमाय पंडित वापस आए थे ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण करके गया से, तो सुबह सुबह सारे भक्त एकत्रित हो गए फूल तोड़ते हुए है। तो उनमें जो श्रीराम पंडित है वो कहते कि अब बहुत खुश थे आज। तो सारे भक्त कहते आज बड़े खुश लग रहे हो, हंसते जा रहे हो पुष्प तोड़ते हुए। उन्होंने कहा आज हमारी जो जाति है उनमें और वो बढ़ गई है, मतलब वैष्णव की संख्या बढ़ गई है, भक्तों की संख्या बढ़ गई है। तो भक्तों ने पूछा कौन कौन भक्त बना है, तो उन्होंने कहा एक महान, एक जिसकी आप कामना कर रहे थे वो निमाय पंडित अभी भक्त बने हैं। तो सारे वैष्णव को अत्यधिक आनंद होता है। और फिर जो चैतन्य महाप्रभु हैं या निमाय पंडित जब भक्तों से ही मिलते हैं और भक्तों के साथ आनंद आदि या नाम संकीर्तन आदि करते हैं, तो जब घर में वो थे निमाय पंडित तो केवल रोया करते थे। सची माता को लगा कि भगवान ने मेरे पति को भी ले लिया, एक बड़ा पुत्र था उसको भी मुझसे छीन लिया, अभी एक छोटा सा ये मेरा बालक है निमाय है इसको भी क्या हो गया है। ये सदैव कृष्ण कृष्ण कहते रहता है, नाचते रहता है, गाते रहता है, रोते रहता है। तो कई लोग कहते थे कि कोई भूत पिशाच ने इसको ये किया होगा, पकड़ लिया होगा, या अधिकतर लोग कहते थे कि इसको वायु रोग हुआ है जिसके कारण इनका मन की जो स्थिति है डलमल हो गई है। तो इस प्रकार से सब लोग कहते थे कि इसका रोग हुआ है। तो फिर निमाय पंडित को बहुत दुख था कि कौन व्यक्ति है इस जगत में जो मेरे हृदय को समझ सकता है कि एग्जैक्टली मुझे क्या हुआ है, ये कौन बता सकता है। तो एक दिन जो श्रीवास पंडित है वो आते हैं निमाय पंडित के यहाँ या चैतन्य महाप्रभु के पास घर में आते हैं। एक दिन गेला तथा श्रीवास पंडित उठी नमस्कार प्रभु कैलासा बहे। तो श्रीवास पंडित सची माता से मिलने के लिए एक दिन उनके घर में जाते हैं। भक्त देखी प्रभु रबाड़ी भक्ति भाव लो महर्ष अश्रुपात कंप अनुराग। तो श्रीवास पंडित जैसे भक्त को देखकर निमाय पंडित उठे, उनको प्रणाम किया और भक्त को देखकर ही भक्ति के जो भगवत विकार है उनके हृदय में जागृत हो गए। तुलसी आचिला करे ते प्रदक्षिणे भक्त देखी प्रभु मूर्छा पाई लाने। तो वहां श्रीवास पंडित तुलसी की परिक्रमा कर रहे थे, इतना देखकर ही निमाय पंडित मूर्छित हो जाते हैं। बाह्य पाय कतक्षणे लागिला कांदिते महाकंप कहो स्थिर ना पारे। तो फिर जब निमाय पंडित अपनी बाह्य अवस्था में आए तो उनका शरीर कंपन हो रहा था और रोने लगे। अद्भुत देखिया श्रीनिवास मने गने, महाभक्ति योग वायु बले को न जने। तो शिवस पंडित ने देखा कि ये जो निमाई है, सारे लोग नवदीप के कह रहे हैं कि इसको वायु व्याधि, वायु की बीमारी हो गई है, लेकिन ये वायु की बीमारी नहीं है, बल्कि इसे इसके हृदय में महाभक्ति योग है, भगवान के प्रति अति तीव्र अनुराग की भावना है। बाह्य पाए प्रभु बोले पंडित तेरा स्थाने कि मुझे पंडित तुम्हें मोरा ये विधान है। फिर निमय पंडित ने कहा देखो, सारे नवदीप के लोग कहते कि मैं पागल हो गया हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ, हे शिवास तुम बताओ मुझे क्या हो गया है। तो शिवास पंडित कहते हैं, हासी बोले शिवास पंडित भगवाय तुम्हारा जन्मत भाई तहा आमिषाय। श्रीवास पंडित जोर से हंसने लगे और उन्होंने कहा कि हे निमाय, तुम्हें जो बीमारी हो गई है ना, वो बीमारी मैं भी चाहता हूं। ये कोई सर्वसाधारण बीमारी नहीं है। महाभक्ति योग देखी तुम्हार शरीर श्री कृष्ण अनुग्रह आई तुम्हारे। तो श्रीवास पंडित ने कहा कि आपके हृदय में कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति का उदय हो गया है और ऐसा ही अनुग्रह मैं अपने जीवन में भी चाहता हूं, श्रीवास ठाकुर कहते हैं। तो जैसे श्रीवास पंडित ने यह कहा तो निमाय पंडित ने कहा मैं यही तो चाहता था सुनना, यदि आप यदि गलत बोलते तो मैं इस देह को त्याग कर देता। तो इस प्रकार से श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निकट थे। चैतन्य महाप्रभु या निमाय पंडित ने कहा जब भक्तों से मिला करते थे तो वो उन्होंने कहा हम सब कीर्तन करेंगे। कीर्तन कहाँ करेंगे? तो श्रीवास के घर में। तो सारे मिलते थे और श्रीवास के घर में नाना प्रकार की लीलाएं उन्होंने की हैं। जैसे आचार्यगण कहते हैं कि कृष्ण का प्राकट्य मथुरा में हुआ था, लेकिन उनकी जो सारे लीलाएं हैं वो नंद महाराज के आंगन में हुई थी। तो उसी प्रकार से सची माता और जगन्नाथ मिश्र के यहाँ निमाय या चैतन्य का प्राकट्य हुआ था, लेकिन उनकी सारे जो लीलाएं हैं शिवास आंगन में हुई थी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आपकी सारी लीलाएं श्रीवास ठाकुर के यहाँ प्रकट कराते हैं और संध्या के समय विशेष रूप से रात्रि के समय संकीर्तन करते हैं। शिवास आंगन में उन्होंने अपने प्रमुख प्रमुख भक्तों को बुलाते थे और कीर्तन करते थे। वास्तव में वो पहला कीर्तन मेला होगा जहां जो किसने शुरू किया था, चैतन्य महाप्रभु ने। रात्रि भर, रात्रि से लेकर सुबह तक केवल कीर्तन करते रहते थे और सारे दरवाजे बंद करते थे, कोई अंदर ना आए। उसमें एंट्री करने के लिए एक ही योग्यता थी, शुद्ध भक्त होना चाहिए। जो भी शुद्ध भक्त है वो कीर्तन में भाग ले सकता है। तो जब अंदर बहुत उदंड कीर्तन होता था तो बाहर कई सारे लोग थे जो सोचते थे कि हमें भी प्रवेश करना है, हमें भी इस कीर्तन में भाग लेना है, लेकिन उनके लिए दरवाजा बंद था। कुछ लोग बीच में से देखते थे, जो छेद होता था दरवाजे का उसमें से देखते थे कि कर क्या रहे हैं। कुछ जो पाखंडित थे वो सोचते थे कि ये रात भर गाते हैं, चिल्लाते हैं, नाचते हैं, लगता है ये अंदर शराब आदि पीते हैं, शराब से उन्मत्त होकर इस प्रकार का क्रंदन आदि करते हैं। या फिर कुछ पागल लोग कहते थे कि ये कई सारे युवतियों को लाते हैं और उनके साथ नाना प्रकार के कार्य आदि करते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे जो पाखंडी लोग थे वो अंदर का जो कीर्तन है उसके बारे में स्पेकुलेट करते थे, लेकिन अंदर तो हरिदास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, मुकुंद, जगदानंद, चैतन्य महाप्रभु, इतने सारे महान महान भक्त, नित्यानंद प्रभु आदि कीर्तन करते थे शिवा सांगन में। और जब ये उदंड कीर्तन होता था तो चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आते थे। तो वृंदावन दास ठाकुर कुछ चीजें लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विरह की जो अनुभूति है उन्होंने श्रीवास आंगन में की। तो जो श्रीवास आंगन है वो कहते हैं कि वरास स्थली से अभिन्न है। जो संकीर्तन है वही चैतन्य लीला, जो रास क्रीड़ा है कृष्ण लीला में है, वही चैतन्य लीला में है, नाम संकीर्तन है। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन जब कीर्तन कर रहे थे तो उनका हृदय बहुत अधिक दुख से भर उठा और वो रोने लगे शिवासांगन में। वो कहने लगे, प्रभु बोले मोरा से दुखे अंत नाय, पाया वो हराई नो जीवन का नाय। उन्होंने कहा, सारे भक्त अचानक रो गए नाचते नाचते, और चैतन्य महाप्रभु रोते हुए हैं सारे भक्तों के सामने अपने हृदय की बात को प्रकट करने लगे। प्रभु बोले मोरा से दुखेरा अंतराय। निमाय पंडित ने कहा कि हे भक्तों, क्या बताऊं मेरे जीवन के दुख की बात, कि मेरे हृदय में इतना बड़ा दुख है कि उसका कोई अंत नहीं है। तो कोई पूछ सकता है, क्या आपके हृदय में इतना बड़ा दुख है? तो निमाय पंडित कहते हैं, पाई आओ हरा इनो जीवन काला है, कि मैंने अपने जो प्राण धन है कृष्ण उनको प्राप्त कर लिया था, लेकिन अभी मैं महसूस कर रहा हूं कि वो मेरे जीवन से चले गए हैं। हाँ, हराय नो सवर संतोष रहस्य सुनिते, श्रद्धा करी सवे बसे लेना चारी बीते। तो सारे भक्त संतुष्ट होकर या दुखी होकर एक प्रकार से वहां बैठ जाते हैं और महाप्रभु वर्णन करते हैं कि मैंने कृष्ण को कहाँ प्राप्त किया था। तो महाप्रभु कहते हैं, कानाई रंगट शाला नामे एक ग्राम, गया है ते आसिते देखिनु से स्थान। मैंने जब दीक्षा ग्रहण किए थे ईश्वरपुरी से, जब मैं वापस आ रहा था नवदीप, तो बीच में मैं कानाई रंगट शाला नामक एक ग्राम में आया था और वहां मैंने उस स्थान में रुक गया था। तमाला श्यामल एक बालक सुंदर, नव गुंजा सहित कुंतल मनोहर। और उस स्थान में एक तमाल वृक्ष के नीचे तमाल के वर्ण जैसा एक बालक को मैंने देखा था, जिसने गुंजा माला आदि धारण की हुई थी, जिससे वो बहुत ही सौंदर्यमान लग रहा था। विचित्र मयूर पुच्छ शोभे तदुपरि, झलमला मणिगण लखित न पारे। तो कहते कि मैंने कौन से कृष्ण को देखा था जिनका वर्ण श्यामल वर्ण का था या तमाल वर्ण के थे, उन्होंने गुंजा माला आदि पहने थे, कान में कुंडल आदि थे और सर के ऊपर मयूर पुच्छ जिन्होंने धारण किया था, और कई प्रकार के जो मणियों की माला है उनके देह में शोभायमान थे। हाते ते मोहन बांशी परम सुंदर, चरणे नु पुरशोभे अति मनोहर। और वो बालक कृष्ण ने हाथों में बांसुरी को धारण किया हुआ था, जिसके कारण वो परम सौंदर्यमान लग रहे थे। और चरण नुपुर शोभे अति मनोहर, चरण में नुपुर भी उन्होंने पहने थे। नील स्तंभ जिन्हें भुजे रत्न अलंकार, श्रीवस्त्र कौस्तुभ वक्षे शोभे मणिहार। तो नील 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 मणि के समान वो सुंदर लग रहे थे, अलग अलग अलंकार श्रीवस्त्र कौस्तुभ आदि उन्होंने धारण किया हुआ था। कि कई बसे प्रीत घटे परिधान, मकर कुंतल शोभे कमल नयान। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रोते हुए अपने भक्तों के सामने कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हैं और कहते कि मैंने ऐसे श्यामल सुंदर कृष्ण को देखा जो मेरे सामने खड़े थे। आमारा समीप आयला हसीते हसीते, आमा आलंगिया पलायला कोन भीते। उन्होंने कहा, जब मैंने देखा तो ऐसे कृष्ण मुझे देखकर हंसने लगे, हंसते हंसते मेरे नजदीक आए और उन कृष्ण ने मुझे आलिंगन किया और जिस आलिंगन करके तुरंत वो चले गए। तो इस प्रकार से शिवासांगन में चैतन्य महाप्रभु बहुत अधिक कृष्ण के प्रति विरह की भावना प्रकट करते थे और सारे भक्तों को नाम संकीर्तन में आनंद प्रदान करते थे। तो शिवास ठाकुर भक्तों में सर्व प्रधान है। हम कहते न श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो जो गौर भक्त वृंद है, महाप्रभु के जितने भक्त है उनमें श्रीवास ठाकुर प्रदान है। तो ऐसे श्रीवास ठाकुर कृष्ण लीला में शास्त्र कहते हैं श्रीवास पंडितो धीमान यह पुरा नारदो मुनि। हम सुनते हैं कि जो श्रीवास पंडित कृष्ण लीला में नारद है, बल्कि नारद मुनि एक बार भक्ति बृहस्पागत महाराज क्लास दे रहे थे, वो कह रहे थे कि कृष्ण लीला में नारद मुनि ब्रह्मचारी है, लेकिन गौर लीला का आनंद प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से संकीर्तन में भाग लेने के लिए वो क्या बन जाते हैं, वहां गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करते हैं और महाप्रभु की लीलाओं को महाप्रभु को आनंद प्रदान करने के लिए अपना जो सर्वस्व है वो प्रदान करते हैं। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ऐसे चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, उनमें श्रीवास ठाकुर अग्रणी क्यों हैं, प्रमुख क्यों हैं, क्योंकि श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के लिए हर चीज उनकी सेवा में निछावर करने के लिए तत्पर है। चैतन्य महाप्रभु एक बार श्रीवास ठाकुर के आंगन में कीर्तन कर रहे थे रात्रि के समय में और महाप्रभु नाचने लगे। उस समय हुआ तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इस घर में कुछ श्रीवास ठाकुर के घर में कुछ विपरीत हो गया है। तो बल्कि सारे भक्त जानते थे कि श्रीवास ठाकुर के घर में क्या हुआ है, उनका जो पुत्र है उसने देह त्याग किया है। तो आंगन में तो सारे भक्त नाच रहे थे, गा रहे थे, लेकिन श्रीवास ठाकुर का जो घर का अंतपुर है, अंदर का जो भाग है जहां उनकी पत्नी मालिनी और घर की और स्त्रियां जोर जोर से, उनका जो एकमेव बालक था उसने देह त्याग दिया था, उस बालक को गोद में लेकर सारी स्त्रियां उच्च स्वर से रोदन कर रहे थे, रोते जा रहे थे। तो श्रीवास ठाकुर ने सुना, वो अपने घर के अंदर गए और वहां देखा कि स्त्रियां रो रही है तो उनको डांटने लगे। उन्होंने कहा कि जिनका नाम स्मरण करने मात्र से, जिनका नाम श्रवण करने मात्र से व्यक्ति भगवत धाम में वैकुंठ को प्राप्त करता है, ऐसे प्रभु हमारे घर में नाच रहे हैं, घर में नृत्य कर रहे हैं और उनके नृत्य में आप बाधा बन रहे हो। तो स्त्रियों को डांटने लगे, उनको चुप कराने लगे और उनको कहा यदि आप चुप नहीं होगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के नृत्य में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। कितनी बड़ी शरणागति है। तो जब महाप्रभु नाच रहे थे, बल्कि बाकी भक्तों को सबको पता चला कि अंदर कुछ घटित हुआ है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो यहाँ विपरीत हो गया है। तो महाप्रभु ने पूछा क्या हुआ है बताओ, तो भक्त लोग डर रहे थे। किसी ने कहा श्रीवास ठाकुर का जो बालक है उन्होंने देह त्याग किया है। चैतन्य महाप्रभु रोने लगे और रोते हुए श्रीवास ठाकुर का आलिंगन करने लगे और उन्होंने कहा हे श्रीवास, मेरे मुझसे इतना प्रेम रखते हो कि मेरे प्रीति के लिए तुम किसी भी प्रकार का कष्ट सहन करने के लिए तैयार हो। तो महाप्रभु रोते हुए उनको कहा कि कैसे आप जैसे भक्त मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मैं कैसे आप जैसे भक्तों को छोड़कर चला जाऊं। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते कि पहले पहला समय था जब महाप्रभु ने संकेत दिया कि मैं आगे क्या करने वाला हूं, संन्यास ग्रहण करने वाला हूं, बाकी भक्त नहीं जान पाए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु रोने लगे श्रीवास ठाकुर का आलिंगन करते हुए। फिर श्रीवास ठाकुर को कहा है आपके पुत्र, तो सारे भक्तों को लेकर चैतन्य महाप्रभु अंदर गए। तो स्त्रियां धीरे धीरे आवाज में रो रही थी और फिर महाप्रभु उस बालक के पास गए और उस बालक को कहा कि उठो। तो जो मृत बालक है वो श्रीवास ठाकुर और उनकी जो पत्नी और सबके सामने उठ के खड़ा हो गया और महाप्रभु ने पूछा अरे तुम श्रीवास ठाकुर को छोड़कर कहां चले गए थे, कहां चले गए हो। तो उन्होंने वो बालक कहता है कि ये तो आपकी परम इच्छा है, आपकी इच्छा वश होकर मैं इस घर इस देह को त्याग करता हूं, क्योंकि आपकी इच्छा के विरोध में कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी किसी शरीर में नहीं निवास कर सकता। तो वो बालक बोलने लगा कि कौन से बाप, कौन से पिता, कितने शरीरों में थे माता पिता। तो ऐसा बहुत बड़ा प्रवचन देने लगा वो बालक और उन्होंने कहा कि हे गौरांग देव, मेरा जो अनुराग है आपके चरण कमलों में बना रहे, चाहे मैं किसी भी शरीर में क्यों ना हो। ये कहकर जो बालक अभी मरा था उठ के बैठा था, फिर से लेट जाता है। सारे भक्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को कहते हैं कि हे श्रीवास, आज से मैं और ये जो नित्यानंद है ये आपके नंदन है, आपके पुत्र है। आप उस पुत्र की क्या बात करते हो, हम दोनों आपके शाश्वत पुत्र हैं। तो श्रीवास ठाकुर अधिक आनंदित होते हैं, भक्त लोग हरि हरि की ध्वनि करते हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु पर्सनली उस बालक को उठाकर ले जाते हैं उसकी अंतिम क्रिया के लिए गंगा में। तो इस प्रकार से श्रीवास ठाकुर की जो शरणागति है उसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, जो चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए, हाँ, जहां सदैव वो महाप्रभु की सेवा के अलावा और नाम संकीर्तन के अलावा किसी और चीज में रुचि नहीं रखते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे श्रीवास, मैं देख रहा हूं कि इतना बड़ा परिवार है तुम्हारा, चार चार भाई, इतनी सारी पत्नियां, उनकी बच्चे, घर में नौकर भी है और बहुत सारे साथ समान है, तुम अपना परिवार का पालन पोषण या गुजारा कैसे करते हो। मैं तो देखता हूं कि कोई नौकरी आदि नहीं करते, तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है, हाँ, तुम कैसे कर रहे हो। तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि आपकी कृपा से सारी चीजें संभव है, हाँ, सारी चीजें आपकी कृपा से ही प्राप्त होती है। तो महाप्रभु ने कहा तुम संन्यास लो ना, तुम किसी के पास मांगने भी नहीं जाते, कोई व्यक्ति तुम्हारे घर ना आए देने के लिए तो फिर तुम्हारे साथ होगा क्या, हाँ, भूखे मरोगे। तो महाप्रभु वो कहते संन्यास लो, महाप्रभु ने कहा संन्यास लो तो भिक्षा भी तो कर सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, हाँ, आपके नाम संकीर्तन के अलावा, आपकी सेवा के अलावा मेरा मन किसी और कार्य करने के लिए, हाँ, इच्छा नहीं करता है। तो फिर उन्होंने कहा बताओ, यदि नहीं मिलेगा तुम्हें खाने के लिए तो क्या करोगे आपके परिवार के साथ। उन्होंने कहा, श्रीवास ठाकुर ने तीन तालियां बजाई। चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे ये क्या उत्तर है, कुछ मुंह से भी तो बोलो। तो फिर श्रीवास ठाकुर कहने लगे कि मैं तीन दिन उपवास करूंगा, यदि नहीं कोई चीज आ जाए तो तीसरे दिन के बाद क्या करूंगा, गले में घड़ा बांध दूंगा और गंगा नदी में जाकर अपने प्राणों को त्यागूंगा। महाप्रभु ने कहा श्रीवास, इतना फेथ मुझ में, कहते मैंने तो गीता बोली है और मैंने गीता में कहा है अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम महामहं। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करता हूं, इस प्रकार से भगवान घोषणा करते गीता में। तो वहां वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जे जे जन चिंते मोरे अनन्य हैया, तारे भिक्षा देवो कोई माथा ये बहिया। तो जो जो अनन्य भाव से मेरे भजन करता है, मेरा स्मरण आदि करता है, तो महाप्रभु कहते तारे भिक्षा देवो मोही, मैं उस व्यक्ति को भिक्षा दूंगा। कैसे, माथाएं भय अपने सर में भिक्षा लेके आऊंगा और उस व्यक्ति को जाकर दूंगा, महाप्रभु कहते हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि हे श्रीवास, इतना अधिक फेर मेरे नाम संकीर्तन आदि में। फिर महाप्रभु का आलिंगन करते और कहते हैं कि यदि लक्ष्मी को भी ऐसा दिन देखना पड़े कि उसके पास भी लक्ष्मी ना रहे, लक्ष्मी को भी भीख मांगने के लिए पात्र लेकर नवदीप के सड़कों में घूमना पड़े, लेकिन फिर भी तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो इस प्रकार से श्रीवास ठाकुर के प्रति चैतन्य महाप्रभु के जो उद्गार थे, तो चैतन्य महाप्रभु के प्रति श्रीवास ठाकुर बहुत अधिक समर्पित हैं और सदैव महाप्रभु की लीला उनके लिए कार्यरत हैं। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु नवदीप के सड़कों में से गए, घूमते घूमते नदी के किनारे गए, गंगा नदी के किनारे। आप सोचो प्रभुपाद घाट में गए होंगे, तो गए तो वहां उन्होंने देखा कि दूर से कई सारे गायें चल रही हैं, घास खा रही है, कुछ गायें जल पी रहे हैं, कुछ गायें अपनी पूंछ ऊपर करके इधर उधर कूद रहे हैं। तो निमाई महाप्रभु ने देखा तो महाप्रभु जोर से चिल्लाने लगे, सेम वही, मतलब मैं ही वही हूं, मैं वो का मतलब है गाय को देखने मात्र से किसका स्मरण हो रहा था, गोपाल का, कृष्ण का। तो महाप्रभु कहते वो मैं हूं, और कृष्ण के भावावेश में आकर दौड़ने लगे और शिवास के घर में गए। तो दरवाजा बंद था, कुंडी लगाई थी, शिवास ठाकुर अपनी माँ पत्नी मालिनी और सबको लेकर पूजा कर रहे थे, नरसिम्हा की पूजा कर रहे थे। किसकी पूजा कर रहे थे? नरसिम्हा की। पुष्प आदि दीप आदि सारा लेकर जब ये महाप्रभु गए दौड़ते हुए कृष्ण भावावेश में, जाकर दरवाजे को लात मारने लगे, हे शिवास क्या कर रहे हो, जिनकी पूजा कर रहे हो मैं यहाँ खड़ा हूं, दरवाजा खोल के तो देखो। श्रीवास ठाकुर पहचान गए, ये आवाज तो मेरे प्रभु निमाई महाप्रभु की है। आते हैं और देखते हैं तो क्या देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु का नरसिंह रूप बिल्कुल विराजमान है एक प्रकार के सिंहासन में। और उनको कहा कि हे श्रीवास जो भी पूजा का सामग्री आदि है वो लेके आओ, आपने सारे सेवक अपनी पत्नी सबको लेके आओ और मेरी पूजा करो और मेरी स्तुति करो। शिवस ठाकुर सबको लेके आते हैं और महाप्रभु जो नरसिंह रूप में है उनकी आराधना करना शुरू करते हैं और उनको दीप और आरती और स्तुति आदि करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हे शिवास तुम मुझे इतने प्रिय हो कि तुम्हारे घर में जो दास दासी हैं, इतना भी नहीं तुम्हारे घर में जो बिल्ली और कुत्ते हैं वो भी मुझे प्रिय है, इतना प्रेम रखते थे। एक बार संकीर्तन खत्म करने के बाद महाप्रभु श्रीवास आंगन से बाहर जा रहे थे, बाहर जाते हुए देखा कि सामने टेलर दर्जी की दुकान है और वो मुस्लिम दर्जी था। तो श्रीवास ठाकुर ने जब देखा उस मुस्लिम दर्जी को तो उन्होंने अपना जो श्याम सुंदर रूप है वो प्रकट कराया, मदन मोहन का जो रूप है। वो दर्जी जो कपड़े सिलाता था, किसके कपड़े सिलाता था? श्रीवास ठाकुर के। मतलब महाप्रभु उनके ऊपर सरलता से कृपा करते हैं जो उनके भक्तों की सेवा में लगा हुआ है। तो जब दर्जी ने देखा ये श्याम सुंदर रूप, तो दर्जी देखा मैंने देखा, बाकी लोग को किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि दर्जी महाप्रभु का जो श्याम सुंदर रूप है उसको देख रहा था। महाप्रभु ने इसलिए उस पर कृपा की थी कि वो किनकी सेवा में लगा है, श्रीवास ठाकुर की। और इसी कारण से इस तत्व को स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु एक दिन श्रीवास ठाकुर के घर में जाते हैं, जो अपनी पत्नी मालिनी के साथ बैठे थे, गए और उन्होंने कहा ये जो नित्यानंद है ये आपके घर में कब से आके रह रहा है, आपके घर में कब से आके रह रहा है। मैं यहां से पढ़ लेता हूं, मुझे एक दिन प्रभु श्रीनिवास रसहे बसिया कहे न तथा कृष्ण रचले। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु गए श्रीवास ठाकुर के पास और उनके घर में जाकर बैठ गए, कृष्ण कथा करते हुए कृष्ण की चर्चा करने लगे। पंडित रक्षय प्रभु विश्वंबर यही आवधुते कहने राख निरंतर। तो महाप्रभु ने कहा देखो आपके घर में एक व्यक्ति रह रहा है, मैं कई दिनों से देख रहा हूं, जिसका कोई आता ना पता, उसका आश्रम भी पता नहीं है, ना वो ब्रह्मचारी है ना गृहस्थ ना वानप्रस्थ ना सन्यासी, अवधूत है। तो महाप्रभु नित्यानंद के बारे में बहुत कुछ बोलने लगे। उन्होंने कहा और वास्तव में श्रीवास ठाकुर की परीक्षा लेना चाहते थे कि ये अवधूत को आपने घर में क्यों रखा है। कौन जाति कौन कुल किछु न जाने परम उदर तुम्हें बदिलामा में। उसकी कौन सी जाति है कौन सा कुल है कुछ नहीं जानते, और तुम इतने उदार हो शिवास फिर भी तुमने वो अपने घर में उनको स्थान दे दिया है। और वास्तव में नित्यानंद प्रभु पहले बार आए थे वृंदावन से नवदीप, तो उनका वेश भी अद्भुत ही था, एक कान में बाले, हाथ में कोई डंडा और अलग अलग नील वस्त्र की धोती उन्होंने पहने थे, थोड़ा विचित्र वेश था। और वो आके घर के सामने कहते, यही विश्वभर का घर है, यही विश्वभर का घर है। हो सबको अच्छा नहीं लगता था, ये कौन है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये जो अवरुद्ध है जिनको तुमने घर में रखा है, हाँ, इसको रखो मत। अपना जाति कुल जदि रक्षा चाव तबे जाकर यही अवरुद्ध है रघु चाव। यदि अपने जाति कुल आदि को मान सम्मान आदि को बचा रखना चाहते हो तो इस नित्यानंद अवरुद्ध को यहां से भगा दो, घर में मत रखो। पंडित हमारे परीक्षा प्रभु ये न है उचित। तो श्रीवास ठाकुर हंसते हुए बोलने लगे, कहा है प्रभु मेरी परीक्षा आप ले रहे हो, ऐसी परीक्षा लेना उचित नहीं है। देने के जितो मां बजे सही मोर प्राण, नित्यानंद तोर देह मोहते प्रमाण। तो बहुत विशेष बात श्रीवास ठाकुर ने कही। श्रीवास ठाकुर ने कहा दिन के जे तोमा भजे सही मोर प्राण, एक दिन के लिए भी कोई आपका भजन करता है चैतन्य देव वो मेरा प्राण है। हाँ, इतने वो व्यक्ति मुझे इतना प्रिय है जो थोड़े समय के लिए भी हे चैतन्य देव आपका भजन करता है। नित्यानंद तोरा देह, और नित्यानंद की बात ही क्या, नित्यानंद तो आपके देह से अभिन्न है, वो इतने अधिक आपको प्रिय है। मदिरा यमनि जदि नित्यानंद धरे, जाति प्राण धन जदि मोर नाश करे। कितनी निष्ठा नित्यानंद के प्रति, और वास्तव में नित्यानंद आदि गुरु है तो नित्यानंद प्रभु के प्रति इतनी बड़ी निष्ठा को स्थापित करते हुए श्रीवास पंडित कहते, मदिरा जवनी जदि नित्यानंद धरे। नित्यानंद प्रभु यदि मदिरा का पान भी करे और यवनी युवती का संग भी करे तो भी, और जाति प्राण धन जदि मोर नाश करे, मेरी जाति को नष्ट करे या फिर मेरा प्राण भी ले ले, मेरा धन भी नाश करे, हाँ, फिर भी तथापि मोहर चित्ते नहीं वा अन्यता, सत्य सत्य तोमरे कहिनु यही कथा। फिर भी एक क्षण के लिए नित्यानंद के प्रति मेरा चित्त विचलित नहीं होगा, मेरी जो नित्यानंद के प्रति प्रीति है आस्था है वो उतनी ही बनी रहेगी। ये सुनीला जदि श्रीवास मुखे ओंकार करे या प्रभु उठे तार मुखे। तो नित्यानंद प्रभु के प्रति इतनी बड़ी आस्था को देखकर और निष्ठा को देखकर चैतन्य महाप्रभु जोर से ओंकार करने लगे, गर्जना करने लगे। और क्या करने किया उन्होंने, जाकर श्रीवास के छाती का आलिंगन किया। प्रभु बोले कि बलिला पंडित श्रीवास नित्यानंद प्रति तोर यही तो विश्वास। हे पंडित क्या बातें कर रहे हो तुम, नित्यानंद के प्रति इतना श्रद्धा इतना विश्वास। मोर गोप्य नित्यानंद जानी लासे तुम्हें तुम्हारे संतुष्ट सहया वर दे हमें। तुम वास्तव में नित्यानंद प्रभु को जान गए हो कि वो मेरे लिए कितने प्रिय हैं, कितने गोपनीय हैं। बल्कि नित्यानंद प्रभु कभी अपने हाथ से खाते नहीं थे, वो उनकी पत्नी जो श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी है उनको खिलाते थे। हाँ, कभी ठीक से वस्त्र नहीं पहनते थे, वो उनको वस्त्र पहनाने पड़ते थे। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु वास्तव में अवधूत है। हाँ, अवधूत का मतलब है, दूत का मतलब है धो देते हैं नित्यानंद प्रभु, तीन गुणों को जो भी उनके संपर्क में आता है इसलिए उनको अवधूत कहा जाता है। तो उन्होंने कहा, फिर वही चीज उनको बोले, जदि लक्ष्मी भिक्षा करे नगरे नगरे तथापि दारिद्र तोर नाही भेक घरे। लक्ष्मी भी भिक्षा करेगी, जैसे उस लीला में भी कहा था, सेम चीज नित्यानंद प्रभु की आस्था के प्रति श्रीवास ठाकुर को कहते हैं कि लक्ष्मी को भी भिक्षा मांगना पड़ा तो भी तुम्हारे घर में दारिद्र का वास नहीं होगा। बिड़ाल कुकुर आदि तुम्हारा बाड़ी सबर आमाते भक्ति हाई एक स्थिर। और उन्होंने कहा आपके घर के चाहे कुत्ते या बिल्ली हो, हाँ वो भी मुझे बहुत अधिक प्रिय है। नित्यानंद समर्पिलो आमितोमस्ताने सर्ववत सर्वमत संवरण करिया अपने। तो श्रीवास ठाकुर को उन्होंने कहा कि नित्यानंद प्रभु को मैं आपके स्थान में समर्पित कर रहा हूं आपके चरण आपके पास, और नित्यानंद की आप क्या करो सदैव सेवा करो। इस प्रकार से महाप्रभु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं जब कोई व्यक्ति उनके भक्तों की सेवा में नियुक्त है। जब श्रीवास आंगन में कीर्तन हो रहा था एक रात्रि में, तो श्रीवास ठाकुर और सारे जो बड़े बड़े भक्त है वो कीर्तन में मग्न रहा करते थे, लेकिन एक दिन चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के बीच में आकर एक साइड में बैठ जाते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, कौन दिन नृत्य करे बसे न आंगने, घर स्नान कराए न सर्व भक्त गने। कभी कभी एक कीर्तन के बाद में स्नान करने जाते थे, या तो नदी में जाते थे स्नान करने, या तो श्रीवास ठाकुर के घर में ही मॉर्निंग हो जाते थे, कीर्तन खत्म होता था सुबह के समय में, तो नदी में एक साथ जाते थे स्नान करने, या तो उधर ही स्नान करते थे। तो फिर एक दिन ये सारे सुबह सुबह बैठ गए, यतक्षण प्रभुर आनंद नृत्य है तत्क्षण दुखी पुण्यवान्ति जलद्वाहय। तो ये सब बैठे थे श्रीवास ठाकुर के आंगन में, सोचा कि इधर ही स्नान करते थे, देखा कि ये जो दुखी नाम की जो स्त्री है दासी थी उनके वहां जो सेविका है वो जल लेके आ रही है, और वो ऐसे वो हमेशा वो ये नहीं सोचते थे कि मेरी सेवा क्या है, अभी वहां कीर्तन खत्म हो रहा है और मैं बस यहाँ लगे पड़े हूँ किचन में, जैसे हम भी सोचते कि किचन में मैं सेवा कर रहा हूँ, वहां सब भक्त नाच रहे गा रहे हैं, लेकिन वास्तव में चैतन्य महाप्रभु हर एक सेवा को देखते हैं, चाहे हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, हम उन सेवाओं को करना चाहते हैं जहां सारे लोग मुझे देखें, मैं उन सबका केंद्र बिंदु बनना चाहता हूं। लेकिन वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की आंख कहां चली गई, दुखी के ऊपर, जो कोई उसको देख नहीं पा रहा है, कोई उसको प्रशंसा नहीं कर रहा है। लेकिन महाप्रभु ने देखा कि इतने सारे गढ़े एक साथ जल से भरे हुए उन्होंने सामने देखे, तो महाप्रभु कहते हैं, क्षण के देखे नृत्य सजल नयने पुना पुना गंगा जल बही बही आने। तो उन्होंने देखा ये जो स्त्री है ये इतने सारे सुंदर घड़े भर भर के ला रही है, और कीर्तन का ध्वनि सुनती है, और साथ साथ उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। महाप्रभु ने वो भी देखा कि ये कीर्तन को सुन के सेवा तो कर रही है लेकिन साथ साथ रो भी रही है। सारे करे चतुर्दिगे कुंडे कुंभगान देखिए संतोष बड़ा श्री सचिनंदन। तो सारे जो कुंभ मतलब जो घड़े देखकर महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए हैं। श्रीवास रस्ता ने पूछे जिज्ञासे आपने प्रतिदिन गंगा जल कौन जने आने। तो श्रीवास ठाकुर को बुलाते हैं, कहते श्रीवास बताओ बताओ ये जो गंगा जल है वो कौन लेके आता है रोज, हमें तो पता नहीं, हम तो नाचते गाते हैं जब स्नान करना है तो पानी लेते हैं या पीते हैं, लेकिन कौन इतना ध्यान रखे कहाँ से पानी आ रहा है। जैसे भक्त भी जो टेम्पल ब्रह्मचारी है उनको पता कहाँ है, कहाँ से धन आ रहा है, कहाँ से खर्चे हो रहे हैं। हमारे लिए इजी है, सुबह जैसे 9 बज जाते हैं तो प्लेट बजाते हुए कहाँ पहुंचते हैं, प्रसाद भवन में। ये सोचते नहीं कि टमाटर कितने किलो का है, आलू कितने किलो के हैं, कहाँ से आए कैसे आए। तो उसी प्रकार से महाप्रभु ने देखा कि जल तो आ रहा है लेकिन कोई उसके बारे में सोच नहीं रहा है, कौन है वो प्रमुख डिवोटी, तो वो कौन है स्त्री थी जो महाप्रभु की आंखों में आ गई। तो महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को पूछा, कौन है जो हर रोज बिना भूले अपनी सेवा कर रहा है, कितना महत्वपूर्ण है अपने अपनी सेवा को टाइम के अनुसार और बिना किसी इस प्रशंसा की भावना रख के कि कोई मेरी सेवा को देखकर मुझे प्रशंसा करे, तो इस भावना को छोड़कर वो दुखी निरंतर उस सेवा में मग्न थी। तो महाप्रभु ने देखा श्रीवास ठाकुर को पूछा,
सेवा सर्वलय प्रभु दुखी बलि आने, प्रभु बोले सुखी करे बल सर्वजने। श्रीवास ठाकुर ने कहा है प्रभु ये तो जो दुखी है ना, दुखी नाम की श्री ये जो सेविका है देखिए सामने ही है, ये जिसका नाम दुखी है ये रोज जल लाने का कार्य करती है। तो महाप्रभु कहते प्रभु बोले सुखी करे बल सर्वजने। आज से कोई भी व्यक्ति तो इसे क्या नहीं बोलेगा, दुखी नहीं बोलेगा, इसको बोलेगा सुखी। ये जने दुखी नाम कभो जोग्य नाय, सर्व काल सुखी है ना मोर चित्त लाय। कहते कि इसका नाम दुखी होना उचित नहीं है, ये मेरे चित्त को आनंद देती है, ये भक्तों की सेवा में लगी हुई है। महाप्रभु ने कहा ये तेकर कारण ने सुने प्रभु रश्री मुखे, कांदिते लागेला भक्त गण प्रेम सुखे। तो सारे भक्तों ने जब ये सुना कि महाप्रभु की इस दुखी के ऊपर इतनी बड़ी कृपा है, ये सुनकर ही जितने कीर्तन में भक्त थे हरि नाम से नहीं रो रहे थे, लेकिन इस महाप्रभु का जो आदान प्रदान है हाँ दुखी के साथ, उससे सब भक्त रोने लगे। सबे सुखी बलि लेना प्रभु र आज्ञा, दासी बुद्धि सेवा सना करे सर्वताय। तो इस प्रकार से सारे लोग तब से उनको सुखी कहने लगे। श्रीवास ठाकुर भी कभी भी अपने जो सेवक सेविका है उनको दासी या सेविका के भावना से कभी देखते नहीं थे, सदैव महाप्रभु के सेवक के रूप में उन सबको देखते थे और उसी के अनुसार सबसे व्यवहार करते थे। प्रेम योगी सेवा कराई कृष्ण पाए, माथा बढ़ाई ले यम दंड न छाड़ाए। तो बहुत पावरफुल चीज वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ऐसी महाप्रभु की जो कृपा है वो प्रेम के साथ उनकी सेवा करने से प्राप्त होती है। माथा मुड़ाई ले मतलब हेडशेव करने से यम दंड न छाड़ाए, माथा के सारे बाल हटाने से यमराज से आप नहीं बच सकते या कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। कुले रूपे धन्यवाद विद्याय की चुनाय, प्रेम योगे भजिले से कृष्ण दुष्ट है। वो कहते कि आपके पास बड़ा कुल है, सुंदर रूप है, आप बहुत धनवान हो, आपके पास बहुत बड़े विद्वत्ता ज्ञान आदि है, इनसे कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी। प्रेम योगे भजिले से कृष्ण दुष्ट है, प्रेम की भावना से उनका भजन करने से कृष्ण तुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हाँ शिवा सागर में अब उनके ऊपर हाँ कृपा करते हैं जो दुखी हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु शिवा सागर में कई प्रकार की लीलाएं करते हैं और श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को सर्वाधिक प्रिय हैं, इसलिए वो सारे भक्तों में हाँ शिरोमणि है या सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रीवास ठाकुर का आज आविर्भाव तिथि है, तो उनसे हमें याचना करनी चाहिए और उनके लीला चरित्र आदि को स्मरण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उनका गुणगान करना चाहिए, ताकि उनकी कृपा से हम चैतन्य महाप्रभु और शिव जो श्री प्रभुपाद का आंदोलन है उनकी सेवा में हम नियुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीवास ठाकुर आविर्भाव के महामहोत्सव सबके पदित पावन श्री प्रभुपाद की जय। गौर वंदे जय।